नवंबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की तैयारी, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने अपने पद से इस्तीफा दिया।
आज श्री अजीत दादा पवार ने कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते, बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है।
बात करेंगे झारखंड के आदिवासियों के पथलगढ़ी आंदोलन के बारे में।
यहाँ जो 25 अनुसूची के तहत जो हम लोग का जो मांग है उसके अनुसार यहाँ पर सरकार चलाए, जैसे कि यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती है।
जिक्र होगा पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा को मिले सेवा विस्तार पर उठे विवाद पर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेने के महज 3 दिन बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बहुमत परीक्षण का आदेश दिया था, लेकिन फडणवीस ने बहुमत न होने की बात स्वीकारते हुए उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। फडणवीस से पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा है कि माली में एक हादसे में 13 फ्रांसीसी सैनिकों की मौत हो गई है। यह बीते 3 दशकों में एक दिन में फ्रांसीसी सेना को हुई सबसे बड़ी जनहानि है। फ्रांसीसी सेना का कहना है कि सोमवार शाम माली में जमीन पर चरमपंथियों से हो रही लड़ाई में मदद के लिए फ्रांसीसी सैनिक 2 हेलीकॉप्टरों में सवार होकर जा रहे थे, तभी हेलीकॉप्टरों की टक्कर हो गई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घटना पर गहरा शोक जताया है। 2012 में इस्लामी चरमपंथियों ने माली के उत्तरी हिस्से साहिल पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद फ्रांस ने वहां कुछ हजार सैनिकों को भेजा था। फ्रांस के यूरोप मंत्री जियां इव ले द्रियान ने कहा,
Je voudrais vous faire part de ma grande tristesse et de mon émotion à la suite de l'accident d'hélicoptère qui a eu lieu hier soir.
कल शाम 13 जवानों की मौत वाले हेलीकॉप्टर हादसे पर मैं बहुत दुखी हूं। वे लोग वहां हमारी सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ाई के लिए गए थे। वे सराहना के काबिल हैं। पूरी सहानुभूति और दुख के साथ हमारी संवेदनाएं उनकी पत्नियों और उनके परिवार के साथ हैं। ये थे फ्रांस के यूरोप मंत्री जियां इव ले द्रियान के शब्द। माल्टा में प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ कीथ शेम्बरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबरें हैं कि पुलिस उनसे पत्रकार डाफने गलीजिया की हत्या के मामले में पूछताछ कर रही है। अक्टूबर 2017 में पत्रकार डाफने गलीजिया की एक कार बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शेम्बरी और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर शक जताया गया था। प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने कहा है कि मिस्टर शेम्बरी ने इस्तीफा देने का फैसला किया है, वरना वो सरकार के सुचारू संचालन में बाधा बन जाते। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने चेताया है कि अगर सरकारें, उद्योग और आम लोग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए मिलकर प्रयास नहीं करते तो नतीजे भयंकर होंगे। UNEP ने कहा है कि अगर मौजूदा नीतियां जारी रहीं तो वैश्विक तापमान पेरिस जलवायु समझौते में तय की गई सीमा से 2 गुना बढ़ सकता है। UNEP ने इस संबंध में आमूलचूल बदलाव की ज़रूरत बताई है और कहा है कि वो भी 10 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी समय है। विश्व मौसम विज्ञान संस्था के महासचिव पेटेरी टालस ने कहा,
It's theoretically possible to reach 1.5, but that would mean very ambitious mitigation means and also for to reach
सैद्धांतिक रूप से तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री पर रोकना संभव है, लेकिन इसके लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान की जरूरत होगी। यहां तक कि 2 डिग्री के लिए भी बहुत प्रयास करने होंगे, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इस सदी के अंत तक यह बढ़ोतरी 3 से 5 डिग्री तक हो सकती है। ये थे विश्व मौसम विज्ञान संस्था के महासचिव पेटेरी टालिस के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगान नेताओं की एक समिति ने कहा है कि वो लोगार प्रांत में सैकड़ों लड़कों के यौन उत्पीड़न से जुड़े दावों के संबंध में जरूरी सबूत नहीं जुटा सके हैं। आरोप हैं कि 6 स्कूलों में 500 से ज्यादा लड़कों का एक आपराधिक नेटवर्क से जुड़े शिक्षकों और स्थानीय अधिकारियों ने यौन शोषण किया था। ऐसी खबरें स्थानीय मीडिया में भी छपी थीं। सुरक्षा बलों ने ऐसे दावा करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया है और कहा है कि वो अपने दावों से अब पीछे हट गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन्हें रिहा करने की मांग की है। यूरोपीय देश अल्बानिया में दशकों के सबसे भीषण भूकंप के बाद मलबे में राहत और बचाव का काम जारी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और खबरों में करीब 600 लोग घायल बताए जा रहे हैं। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करके रेहान फजल का। देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से पहले अजीत पवार डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे चुके थे। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शनिवार सुबह राजभवन में शपथ ली थी। इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कल महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
3 दिन पहले राजभवन में चुपचाप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज दोपहर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फडणवीस की घोषणा से कुछ देर पहले ही उनके साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी पद छोड़ दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने बताया,
आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे।
फडणवीस के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा,
अवैध तरीके से बने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आज इस्तीफा सौंप दिया है। हमें ये उम्मीद है कि राज्यपाल दलगत सियासत से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतारकर राज्यपाल का जो उत्तरदायित्व तो बनता है उसका निर्वहन करेगा और जो महाविकास अघाड़ी है उसको तुरंत महाराष्ट्र में सरकार बनाने का न्योता दे।
इससे पहले शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को बुधवार शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा,
मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को दाद देनी चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने ही संविधान की सुरक्षा, और मैं आज इनको कुछ सलाह देना चाहता हूँ कि आप ऐसे करते जाओ और करते जाओ और जितना और करोगे उतना ही देश को ये साबित हो जाएगा कि आपको देश के फ्यूचर के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको संविधान की सुरक्षा पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप चाहते हो कि कैसे तरीके से आपकी सत्ता बनी रहे और संविधान को तोड़ फोड़ कर जहां आपको सत्ता नहीं मिलती सत्ता पाली।
इसी बीच कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता मुंबई के होटल ट्राइडेंट में बैठक कर रहे हैं। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि उद्धव ठाकरे को गठबंधन का नेता चुना जाएगा और नई सरकार छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर चलेगी।
रियाय का राज होगा, इस सरकार में किसी पर धर्म, जाति, भाषा के नाम पर कोई भी अन्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र का विकास हो, जनता को न्याय मिले, इन सूत्रों को लेकर निश्चित रूप से हम सरकार चलाएंगे।
इसी बीच जब फडणवीस से अजीत पवार के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा,
अब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से साथ है, हमारे साथ नहीं है।
वहीं ट्राइडेंट होटल पहुंच रहे एनसीपी नेता संदीप पाटिल ने कहा कि अजीत पवार आज की इस बैठक में तो नहीं आएंगे लेकिन वो उनके संपर्क में है।
इस सभा में, मीटिंग में सिर्फ हमारे आघाड़ी का नेता कौन रहेगा इसके ऊपर निर्णय होगा और बाद में हमारे जो भी नेता मुख्यमंत्री होने वाले हैं वो उनके साथ कौन टीम साथ में काम करेगी उसका निर्णय वो
लेंगे।
अजीत पवार जी आज नहीं आएंगे, उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन लगातार दो दिन से मैं उनको मिल रहा हूँ और आज भी उनको जाके मिलने वाला हूँ।
ये तय है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों की बैठक में उद्धव ठाकरे को नेता चुन लिया जाएगा और वो आज ही राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा भी पेश कर सकते हैं।
ये थी दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट। इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में राजनीतिक गहमागहमी अपने चरम पर है और नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों की बैठक हुई है। सीधे चलते हैं मुंबई बीबीसी मराठी के संवाददाता मयूरेश के पास। बताइए मयूरेश, क्या ताज़ा खबर है वहाँ से?
खबर यह है कि अभी कुछ ये मीटिंग जो है शिवसेना बीजेपी, अभी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, जो वाकई में 23 नवंबर को जो घोषणा होने वाली थी, लेकिन उसी वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सरकार बन गई, तो वो घोषणा जो अब तक पेंडिंग थी वो अब हो जाएगी। इन्होंने अपने गठबंधन का नाम महाविकास आघाड़ी तय कर दिया है और अब उद्धव ठाकरे को नेता चुनेंगे। अब देखना यह है कि क्या वो आज ही जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, क्योंकि कल सुबह ही राज्यपाल कोश्यारी ने विधानसभा का सत्र जो है वो बुलाया है, कल सुबह 8 बजे से वो शुरू होगा और जो नए विधायक चुन के आए हैं उनको असेंबली की शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। तब क्या कल वो करेंगे, अगर वो कल करते हैं तो शायद राजभवन में हो सकता है, लेकिन शिवसेना की इच्छा ये है कि उनके मुख्यमंत्री का उद्धव ठाकरे का जो शपथ ग्रहण समारंभ हो वो शिवाजी पार्क में हो। ये एक बड़ा मैदान है जहां पे बाला साहब ठाकरे हमेशा उनकी सभाएं करते थे, तो अब देखना ये होगा कि क्या वो आज जाकर शपथ सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं कि नहीं, लेकिन मीटिंग जो है वो अब शुरू है फिलहाल।
राज्यपाल की तरफ से शिवसेना गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के कोई संकेत मिले हैं? कोई शपथ ग्रहण का कोई दिन तय हुआ है या अभी इस पे विचार हो रहा है?
इस पे विचार हो रहा है, हालांकि कल ही कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के नेता राज्यपाल को मिलने गए थे और उन्होंने उनको एक पत्र भी दिया है और उस पत्र में उन्होंने ये कहा कि जो सरकार उस वक्त बनी थी जो अब नहीं रही, फडणवीस और अजीत पवार की सरकार, तो वो उनके पास बहुमत नहीं है, हमारे पास बहुमत है और आप हमें सरकार बनाने का मौका दे दे। तो ये पत्र उन्होंने वैसे ही राज्यपाल को दिया है, लेकिन अब तक राज्यपाल की तरफ से इनको किसी भी तरह की आमंत्रण जो है वो नहीं दिया गया। सिर्फ राज्यपाल ने अभी कुछ देर पहले ये घोषणा कर दी कि विधानसभा का विशेष सत्र कल से बुलाया जाएगा जो उनके अधिकार में है। तो अब देखना ये होगा कि या राज्यपाल इन्हें बुलाते हैं या फिर ये खुद ही होकर राज्यपाल से मिलने जाते हैं बहुमत का पत्र, सारे विधायकों की स्वाक्षरी का खत लेकर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयूरेश मुंबई से।
बीबीसी हिंदी रेडियो का दिन भर कार्यक्रम आप 25, 31 और 49 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर भारतीय समय के मुताबिक रोजाना शाम 7:30 से 8 बजे तक सुन सकते हैं। हमारे सभी रेडियो कार्यक्रम आप bbchindi.com पर लाइव भी सुन सकते हैं।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवाकाल में बढ़ोतरी के नोटिफिकेशन पर कल तक के लिए रोक लगाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने रक्षा मंत्रालय और सरकार को भी नोटिस जारी किया है। जनरल कमर बाजवा को 29 नवंबर को रिटायर होना था। 19 अगस्त को प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल बाजवा का कार्यकाल 3 और साल के लिए बढ़ा दिया था। थोड़ी देर पहले मैंने इस्लामाबाद फोन कर बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूकी से बात की और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा के बारे में क्या कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन आई थी एक प्राइवेट लिटिगेंट की तरफ से। उन्होंने जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन थी एज आर्मी चीफ फॉर अ सेकेंड टर्म, उसको उन्होंने चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि ये रूल्स और प्रोसीजर्स के जो गवर्नमेंट के हैं उसकी वायलेशन में है और इसको जो है वो खत्म किया जाए, सेकंड टेन्योर के लिए जनरल बाजवा को आर्मी चीफ जो है वो ना बनाया जाए। जनरल बाजवा जो है उनकी सेकंड टर्म में एक्सटेंशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अगस्त में दी थी और 29 नवंबर यानी 2 डेज फ्रॉम नाउ उनकी नई टेन्योर जो है वो शुरू होनी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया है जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक्सटेंशन दी थी फॉर अनदर टर्म। सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेंट का ये एतराज या ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि रूल्स को फॉलो नहीं किया गया उनको एक्सटेंशन जारी करते वक्त, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो टेक्निकल बातें थी, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट है उसको ये पहले अप्रूव करना चाहिए था एक्सटेंशन और प्रेसिडेंट उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी करते, लेकिन एक्चुअली जो है वो इसके बिल्कुल उलट हुआ। प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ओहो इसकी तो कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी, तो फिर कैबिनेट का एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई और उसमें फिर उसकी एक्सटेंशन जो है उसको अप्रूव किया गया। तो इस टेक्निकल ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया है। अब कल इसकी दोबारा हियरिंग होगी जिसमें आर्मी चीफ को बुलाया गया है, वो इन पर्सन भी आ सकते हैं, अपने लॉयर के थ्रू भी आ सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी बुलाया है कि वो आके इस पे अपना जवाब दे ताकि उस पे फिर फाइनल वर्डिक्ट जो है वो शायद कल एक्सपेक्ट।
ये जो सस्पेंड किया है इस फैसले को, इस पर कुछ रिएक्शंस आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से?
जी, गवर्नमेंट ने की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुए थे और उन्होंने अदालत को इस बात पे सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि ये नोटिफिकेशन इशू करते वक्त लॉ को फॉलो किया गया है। कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और सब कुछ हुआ, उसके ऑर्डर में शायद कुछ इधर उधर हुआ लेकिन तमाम चीजों को फॉलो किया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें 11 मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, हालांकि 25 की स्ट्रेंथ है तो मेजोरिटी तो इसकी कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी नहीं किया, तो उस वजह से उनका जो स्टैंड वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद फौरन अभी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें अभी इस पे बात होगी और कहा यह जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से नोटिफिकेशन जो है एज पर द लॉ और जो ठीक प्रोसीजर है उसके तहत दोबारा से शायद आज रात उसको नोटिफाई करेगी।
ये थे इस्लामाबाद से आसिफ फारूकी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फैसला किया है कि वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला मानेगा और इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं करेगा। बोर्ड ने अभी इस बात पर फैसला नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन ली जाए या नहीं। इस पर फैसले के लिए बाद में बैठक बुलाई जाएगी। और जानकारी के साथ समीर आजमत मिश्र।
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद ही ये घोषणा कर दी थी कि वो फैसले को आगे चुनौती नहीं देगी, लेकिन मंगलवार को बोर्ड की बैठक में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी गई। बोर्ड के 7 सदस्यों में से 6 सदस्यों ने पुनरीक्षण याचिका न दायर करने पर सहमति दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने बताया,
हम एक पब्लिक स्टैंड ले चुके हैं शुरू से कि जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसे हम मानेंगे भले वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। और ये सिर्फ हमारा स्टैंड नहीं था बल्कि जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी लोग इससे संबंधित रहे हैं पक्षकार, उनका सबका यही मानना था, उस स्टैंड से हम नहीं हट रहे हैं और बाकी लोग स्वतंत्र हटने के।
सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक सदस्य अब्दुल रजाक इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने बैठक में अपनी राय ये दी कि इस फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की जानी चाहिए। इसके पीछे अब्दुल रजाक ये तर्क देते हैं,
रीजन दिया कि ये दावा था, ये आर्टिकल 32 की कोई रिट पेटिशन नहीं थी और ये SLP नहीं थी 136 की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को 142 का पावर एक्सरसाइज करने का कितना जुडिशन था या नहीं था ये डिसाइडेड बाय इन रिव्यू।
पिछले हफ्ते लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बैठक हुई थी जिसमें एक मत से इस बात का फैसला किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका यानी रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही याचिका दाखिल करने वाला है और बोर्ड की बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी ऐसा ही करने की अपील की गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में इस बात पर भी चर्चा होनी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार की ओर से मस्जिद के लिए दी जाने वाली जमीन स्वीकार की जाए या नहीं। इस मुद्दे को फिलहाल आगामी बैठक तक टाल दिया गया है, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी कहते हैं कि ये उनके एजेंडे में नहीं था।
ये मुद्दा 5 एकड़ वाला हमने नहीं अपनी तरफ से उठाया था, ना हमने सुप्रीम कोर्ट में ये डिमांड की थी लेने की और ना लेने और ना लेने की बहस हमने छेड़ी। ये बहस भी कहीं और से शुरू हुई है, तो जिन लोगों ने बहस शुरू की उनसे सवाल करिए। हम तो ऑर्डर को फॉलो करेंगे, हम उस पर अभी राय बनाएंगे हमें क्या करना है।
जफर फारूकी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में ये भी तय किया गया है कि मीडिया से बातचीत के लिए सिर्फ अध्यक्ष ही अधिकृत व्यक्ति होंगे और कोई नहीं। गत 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को खत्म करते हुए विवादित जमीन रामलला को सौंप दी थी। एक अन्य हिंदू पक्षकार निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का सरकार को निर्देश दिया था। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
देश में पहली बार 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीद करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार साल भर के भीतर ही बैकफुट पर आ गई है। असल में केंद्र सरकार ने राज्य को चेतावनी दी थी कि अगर छत्तीसगढ़ ने 2,500 रुपए में धान की खरीद की तो वो राज्य सरकार से चावल नहीं लेगी। अब राज्य सरकार ने कहा है कि वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1,815 रुपए के समर्थन मूल्य पर ही खरीद करेगी। दूसरी ओर राज्य में भारतीय जनता पार्टी इस बात पर दबाव बना रही है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों से 2,500 रुपए की कीमत पर ही धान खरीदे। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में पिछले साल सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हर साल इसी कीमत पर धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस साल साफ कर दिया कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2,500 रुपए की दर से धान की खरीदी की तो वह राज्य से चावल नहीं खरीदेगी। केंद्र सरकार राज्य में खरीदे गए धान का लगभग आधा चावल खरीदती रही है, लेकिन इस साल 1 दिसंबर से 85 लाख टन धान की खरीदी की तैयारी में जुटी राज्य सरकार के सामने यह बड़ा संकट खड़ा हो गया कि अगर केंद्र ने चावल नहीं खरीदा तो इतने चावल का राज्य सरकार करेगी क्या। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को अभी साल भर भी नहीं हुए हैं और अपने वादे से उसे पीछे हटना पड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं,
छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदना चाहती है लेकिन केंद्र सरकार वो चावल हमसे नहीं खरीदना चाहती। भारत सरकार के अहंकार और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की तुष्टि के लिए सभी संग्रहण केंद्रों में हम 1,815 और 1,835 रुपया का ही बैनर टांगेंगे।
भूपेश बघेल का दावा है कि वह कोई नई योजना बनाकर किसानों की जेब तक धान की 2,500 रुपए की कीमत जरूर पहुंचाएंगे।
हम किसी दूसरे योजना के माध्यम से देंगे। भारत सरकार भी तो आखिर किसान सम्मान निधि दे रही है, जैसे उड़ीसा में कालिया, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में रायतू, हमारे छत्तीसगढ़ में भी किसानों का साथ न्याय होगा। और मैंने ये घोषणा की है कि किसानों के हर हालत में उसकी जेब में 2,500 रुपए जाए।
लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की घोषणा राज्य सरकार ने की थी उसे सरकार पूरा करने से पीछे हट रही है।
मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि 2,500 रुपए किसानों को मिलेगी, तो मुख्यमंत्री जी ने 2,500 रुपए वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि 1,835 में हम धान खरीदी करेंगे और बाकी पैसा के लिए हम समिति बनाएंगे। इसका मतलब किसानों को एक बार फिर आपने ठगा।
हालांकि राज्य सरकार अभी भी केंद्र पर इस बात के लिए दबाव बना रही है कि वह 2,500 रुपए में धान खरीदी को हरी झंडी दे दे। इसके लिए कांग्रेस ने राज्य भर के भाजपा सांसदों के घर पर नगाड़ा बजाना शुरू किया है। इसके अलावा राज्य भर से प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठियां लिखवाई जा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार धान के मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसके खिलाफ 1 दिसंबर को आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के पूरे 1,380 जो सहकारी समिति है जहां धान खरीदी होती है वहां पर किसानों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी 2,500 रुपया धान के कीमत देने के लिए हम एक दिवसीय पूरे प्रदेश व्यापी धरना देंगे।
छत्तीसगढ़ के 80% किसानों का घर धान की फसल से ही चलता है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
2 साल पहले झारखंड के खूंटी से आदिवासियों ने अपनी मांग को लेकर पथलगढ़ी अभियान शुरू किया था। इसके तहत हर गांव में बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं जिनमें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के जो अधिकारों की व्याख्या की गई है उसे लोगों को समझाया जाता है और उसके लागू नहीं किए जाने का विरोध किया जाता है। मगर प्रशासन ने लगभग 10,000 आदिवासियों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किए हैं। झारखंड के खूंटी में पथलगढ़ी अभियान से जुड़े लोगों से बात की BBC संवाददाता सलमान रवि ने।
झारखंड के खूंटी का इलाका इस वक्त चर्चा में है क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा देशद्रोह के मुकदमे लोगों के ऊपर दायर किए गए हैं। उन लोगों पर दायर किए गए हैं जो यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, जंगलों का इलाका है ये, और ये अपनी मांग रख रहे हैं कि 5वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसकी मांग को लेकर यहाँ पर इन्होंने पथलगढ़ी का एक मूवमेंट चलाया। ये पथलगढ़ी का है, भारत का संविधान, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन खास बात यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कोई भी बाहरी व्यक्तियों को पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में व्यवसाय, कारोबार, रोजगार पर प्रतिबंध है। इस मांग को लेकर यहाँ संघर्ष चल रहा है। नीचे 2017 का ये पत्थलगड़ी है। पत्थलगड़ी का जो मूवमेंट है वो जब शुरू हुआ तो काफी दूर तक फैल गया और इसकी आंच में मध्य भारत के यानी छत्तीसगढ़ के इलाके भी आए, वहां भी इसी तरह की मांगे होने लगी और पत्थलगड़ी गाड़ना शुरू किया आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेने के लिए। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या ये आंदोलन आप लोगों का था। ये
विशेष करके यहाँ जो पांचवी अनुसूची के तहत जो हम लोग का जो मांग है, पांचवी अनुसूची में जो भी प्रावधान है उसके अनुसार यहाँ पर सरकार चलाए। जैसे कि यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती है और बहुत सारा जैसे डॉक्टर किए हैं, इंजीनियर पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो लोग के लिए जगह नहीं है।
यहाँ पर ये आदिवासियों को नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरियों में उनका कोई योगदान नहीं है, कारोबार में नहीं है, यही मांग है आप लोगों की कि प्रतिनिधित्व दिया जाए आदिवासियों।
विशेष करके जो भी पच्चीस ने सूची में जो भी प्रावधान है उसी के अनुसार ही यहाँ सरकार चलानी है।
लेकिन ये जो देशद्रोह के मामले हैं, ये लोगों ने मुंह ढक रखे हैं, कितना खौफ है, 10,000 लोगों के खिलाफ में देशद्रोह का मामला है तो इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, ये कितना आप लोगों का, आपने चेहरा ढका हुआ है, डर है मन में लगता है?
बहुत डर है। डर तो इसलिए है कि पत्थलगाड़ी के नाम से जितने भी लोगों का नाम आ रहे हैं उनको डायरेक्ट जेल में अंदर कर दे रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। तो हम लोग यह जैसे संविधान की जो पत्थलगाड़ी करना शुरू किए हैं और सरकार ये कहती है कि संविधान की गलत व्याख्या, तो सरकार को ये बताना चाहिए ना कि उनका कर्तव्य होता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तो ये हम लोग स्पष्ट करना चाहते थे कि सरकार ये जैसे हम लोगों को देशद्रोह ठहरा रहे हैं या इस तरह का जो मुकदमा हम लोग के ऊपर दर्ज करा रहे हैं, ये कहाँ सही है कहाँ गलत है, उनको बताने में इतने समय क्यों लगा?
मेरे ख्याल से इतने ज्यादा देशद्रोह के मामले और कहीं नहीं हुए होंगे,
कहीं नहीं
किसी हुआ जिले में या किसी
कहीं नहीं हुआ सर। ये जो हम लोग वोट देकर की सरकार बनाते हैं, जनता ही बनाते हैं सरकार, और सरकार क्या होते हैं, किरायादार होते हैं, तभी न हर पांच साल में चुनाव होते हैं। तो ये आप जिस जनता ने आपको चुन के भेजे हैं, सरकार बनाए हैं, उनको क्या आप देशद्रोह का मुकदमा कर सकते हैं या उसको जेल में डाल सकते हैं?
बहुत मार्के की बात कही कि सरकार जो है वो किरायेदार है, लोकतंत्र में हर पांच साल पे नया किरायेदार आता है लेकिन मालिक तो जनता है, यही ये कहना चाह रहे हैं। ये बताइए कि जो देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए, नाम से तो नहीं है, अज्ञात है, किसी को भी पकड़ के देशद्रोह के मुकदमे में
नहीं, नाम से है,
और जो अन्य कर दिया है क्या?
अज्ञात में भी है। हाँ। नाम से जितना मान लो इस गांव में नामजद करके कुछ नाम दिए हैं और अन्य करके हजारों लोगों का दिया हुआ है,
तो सब तो उसी
सब, सब उसी में आता है देशद्रोह का मामला। तो हम लोग कहाँ भागेंगे और कहाँ रहेंगे? तो हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग का यहाँ का जो भी अधिकार है, जो भी अधिकार मिला है, कुछ भी अगर हो तो उसी के अनुसार ही, नियम के अनुसार ही यहाँ काम हो।
लेकिन ये बताइए कि स्कूल बंद कराए गए, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया आपने, क्यों ऐसा?
स्कूल बंद करने का मकसद ये था जो कि हम लोग पांचवी अनुसूची का जो भी हम लोग लिखे हैं पत्थल में लिख करके हम लोग भेजे राज्यपाल के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ भी भेजे, तो कोई जवाब नहीं। तो देखिए कम से कम साल भर गुजरने के बाद भी कोई जवाब नहीं, उसके बदले में केवल केस केस केस। तो कम से कम ये खुलासा होना चाहिए था, ये हम लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। चलो अगर मान लो हम लोग गलत भी किए हैं तो क्या सही है, उसको भी तो कम से कम बताना चाहिए था। एक मूवमेंट हम लोग रखे कि कम से कम एक चीज हम लोग को पकड़ेंगे और उसके बाद सरकार जरूर जागेगी, उसके बाद इसके बारे में चर्चा हो।
तो सुना आपने कि यहाँ पर जो माहौल है वो डर का है, चूंकि इतने सारे मामले दर्ज किए गए हैं यहाँ पे अन्य करके लोगों के खिलाफ में, नामजद भी बनाए गए हैं लोग, लेकिन एक संवादहीनता, जैसा कि लोगों ने बताया कि एक संवादहीनता की स्थिति है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकार की तरफ से कोई डायलॉग, कोई वार्ता इन लोगों के साथ नहीं हो रही कि इनकी मांगे क्या हैं और ये क्या चाहते हैं, और यही वजह है कि पत्थलगड़ी का जो ये आंदोलन चला है ये अब भी जो है एक तरह से एक अंदर अंदर अंडरकरंट की तरह से बह रहा है झारखंड के जंगलों के इलाकों में, खास तौर से इस खूंटी के इलाके में। सलमान रावी, BBC खूंटी।
और अब सभा के अंत में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेने के महज 3 दिन बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया है। उधर NCP, शिवसेना, कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को गठबंधन का नेता चुन लिया है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा है कि माली में एक हादसे में 13 फ्रांसीसी सैनिकों की मौत हो गई है। यह बीते 3 दशकों में एक दिन में फ्रांसीसी सेना को ही सबसे बड़ी जनहानि है। माल्टा में प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ कीथ शेम्बरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबरें हैं कि पुलिस उनसे पत्रकार डाफने गलीजिया की हत्या के मामले में पूछताछ कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम ने चेताया है कि अगर सरकारें, उद्योग और आम लोग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए मिलकर प्रयास नहीं करते तो नतीजे भयंकर होंगे। अफगान नेताओं की एक समिति ने कहा है कि वो लोगार प्रांत में सैकड़ों लड़कों के यौन उत्पीड़न से जुड़े दावों के संबंध में जरूरी सबूत नहीं जुटा सके हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।